समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अब वक्त हो चला है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे। हम आपको लेकर चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल जगत की हलचल पर भी हमारी नजर रहेगी, साथ ही उन विशिष्ट व्यक्तित्व को भी आज हम याद करेंगे जिनकी पुण्यतिथि है या जन्मदिवस है आज। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर, और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो दिव्या, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय, विद मी टुडे इज माय को-होस्ट दिव्या तोमर, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित 5 राज्यों को 1,554 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त धनराशि को मंजूरी दी।
रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान सेज सेवरल रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव्स टेकन बाय द सेंटर फॉर रूरल एम्पावरमेंट।
दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम को अंतिम रूप देने के लिए आज शाम भाजपा विधायक दल की बैठक। विधायक दल का नेता चुनने के लिए रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ पर्यवेक्षक नियुक्त।
ज्ञानेश कुमार टेक्स चार्ज एज अ न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर।
क्रिकेट में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के 9वें संस्करण का पहला मैच कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच चल रहा है।
एंड इन वुमेन्स प्रीमियर लीग यूपी वॉरियर्स टू टेक ऑन दिल्ली कैपिटल्स एट वडोदरा दिस इवनिंग। And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about safeguarding India's archaeological wonders. Well, archaeological sites are important to preserve because they are the evidences of ancient civilizations, cultures and identities, and they are also part of a cultural heritage. And India, Divya, is a land of surprises. Surprises is home to some of the world's most iconic cultural and archaeological treasures, from the intricately carved temples of Khajuraho and the historic ruins of Hampi to the revered Somnath temple. The country boasts of a vast array of monuments that reflects its rich history, diverse traditions and architectural brilliance. And these sites, stretching from the northern Himalayas to the southern tip of Kanyakumari, are a testament to India's glorious past and cultural legacy.
बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा कि भारत एक समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का घर है, जिसने हजारों साल पुराने पुरातात्विक स्थलों को संरक्षण दिया है और बेहतरीन तरीके से हमारे समुदाय ने उसको संरक्षित रखा है। लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम पैटर्न की वजह से, समुद्र के बढ़ते स्तर की वजह से, लू, जंगल की आग, मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं इन अमूल्य स्थलों को मुख्य तौर पर खतरे में डाल रही हैं। यही नहीं, बल्कि हम ये कहेंगे कि कई बार ये कारण मानव निर्मित भी होते हैं। मनुष्य भी कहीं ज्यादा अब इस तरीके का रोल अदा करने लगा है, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार मॉन्यूमेंट्स पर लोग जाते हैं और उनको खराब करते हैं। तो इन कारकों से होने वाले क्षति जो है, चल और अचल विरासत दोनों की गिरावट को तेज कर रही हैं, जिससे भारत की सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण को खतरा उत्पन्न हो गया है। इन ऐतिहासिक खजानों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय हस्तक्षेप करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि तत्काल सुरक्षात्मक उपायों के बिना उनका भविष्य खतरे में रहता है। और कहीं ना कहीं अगर हमारे जितनी भी हमारी विरासत हैं वो अगर खतरे में रहेंगी और अगर हम उनको संरक्षित नहीं कर पाएंगे, तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या विरासत सौंपेंगे?
Absolutely. And established in 1861, the Archaeological Survey of India, ASI, is responsible for protecting and maintaining 3,698 monuments and archaeological sites that are considered of national importance. And these sites are protected under the Ancient Monuments Preservation Act of 1904 and the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act of 1958. And ASI preserves a wide range of heritage, including prehistoric rock shelters, Neolithic sites, megalithic burials, rock-cut caves, stupas, temples, churches, mosques, tombs, forts, palaces, and more. And these sites reflect India's rich cultural and architectural history. Each year, ASI prepares a conservation program to maintain and protect these monuments, working to minimize intervention while preserving the authenticity. And conservation involves addressing challenges that arise from the nature of construction, materials used, and environmental factors. Decay or deteriorating of protected monuments depends on nature and technique of the construction, material use, structural stability, climate factors, biological, botanical factors, encroachments, pollution, quarrying, natural disasters, etc.
बिल्कुल अभिषेक, और आपने टेक्निकल फैक्टर्स की बात की है कि हम कैसे टेक्निक के जरिए अपनी जितनी विरासत हैं उनको संरक्षण प्रदान कर सकते हैं. तो उसमें 3D स्कैनिंग है, इमेजिंग है और ड्रोन जैसी तकनीक है जिससे जिनने काफी प्रगति की है और जिनसे हम पुरातत्विक स्थलों की निगरानी और सुरक्षा के तरीके में क्रांति ला सकते हैं. और ये उपकरण क्षति के शुरुआती संकेतों का पता लगाने और जीर्णोद्धार के लिए अधिक सटीक डेटा प्रदान करने में महत्वपूर्ण मदद करते हैं. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपने 37 सर्कल कार्यालयों और एक मिनी सर्कल कार्यालय के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटता है जो मुख्य रूप से राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं, जहां ये संरक्षण प्रयासों और पर्यावरण विकास में समन्वय करता है. इसका लक्ष्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन ऐतिहासिक स्थलों की अखंडता को बनाए रखना है, ये सुनिश्चित करना है कि वे अपने मूल रूप में संरक्षित रहें और भारत की विरासत को प्रतिबिंबित करते रहें. पिछले कुछ सालों में हम देखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में हम देखेंगे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत स्मारकों के संरक्षण के लिए आवंटित राजस्व में भी 70% की बढ़ोतरी की गई है और इन व्यापक उपायों के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए भारत के सांस्कृतिक विरासत स्थलों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए जलवायु के अनुकूल समाधान भी अपना रहा है.
Absolutely, and ASI is also monitoring air pollution. And under this step, air pollution laboratories have been established at sites like the Taj Mahal in Agra and the Bibi Ka Makbara in Aurangabad. ASI holds regular meetings with other government bodies to create coordinated strategies for preserving cultural heritage sites in response to climate change.
Rashtriya Apada Prabandhan Pradhikaran, NDMA, ne ASI के सहयोग से सांस्कृतिक विरासत स्थलों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा निर्देश विकसित किए हैं जिसमें जोखिम मूल्यांकन, आपदा तैयारी और पुनर्प्राप्ति योजनाएं शामिल हैं. सरकार ने सांस्कृतिक विरासत को व्यवसायीकरण और शहरीकरण के दबाव से बचाने के लिए विभिन्न उपायों को लागू किया है. इनमें स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधान, प्रवर्तन शक्तियां और बढ़ी हुई सुरक्षा शामिल है.
Absolutely, and preserving India's cultural heritage is an ongoing, multifaceted effort requiring proactive measures to address environmental, legal and security challenges. The Archaeological Survey of India, in collaboration with various agencies, continues to monitor, protect and conserve the nature's monumental treasures. With continued dedication, these efforts ensure that India's rich history remains safeguarded for future generations to experience and appreciate.
और परिक्रमा के सेगमेंट में समय है क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास जाने का और जानते हैं कि उनके पास क्या विशेष है.
एब्सोल्युटली, एंड द आदि महोत्सव 2025 इज अंडरवे एट द मेजर ध्यानचंद स्टेडियम इन न्यू दिल्ली एंड द 10-day फेस्टिवल शोकेसेस द वाइब्रेंट कल्चर, हेरिटेज एंड इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ इंडियाज ट्राइबल कम्युनिटीज. वी हैव अ रिपोर्ट.
The ongoing Adi Mahotsav at Major Dhyanchand National Stadium in Delhi is a venue to explore the tribal community's food, cuisine and handicrafts. More than 600 tribal artisans and 500 artists are participating in this festival who are representing diverse traditions from more than 30 states and union territories. People coming to the festivals are buying tribal paintings, jute bags, handmade home decor products in large number. Talking to Akashwani News, an exhibitor from Odisha, Ramchandra Munda shared his experience with us.
बहुत खुशी होता है और सब लोग देता है. ती बनाने के लिए छोटा वाला बनाने 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगता है. बड़ा वाला बनाने 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन लगता है. अगला साल में जैसे धान का छोटे छोटे बनाते हैं गांव में उनके बेचते हैं, अभी देख देख के सीख के बड़ बड़ के आइटम आइटम बनाते हैं।
Another exhibitor, Rajni Dhurve from Madhya Pradesh, expressed happiness after getting a platform to showcase her artwork.
मैच तो बहुत अच्छा मिला है मेरे को, कल से स्टार्ट हुआ है यहाँ जी, अभी मेरे डेमो चल रहा है यहाँ ट्रैवल म्यूजियम का। मुझे मंच मिला तो मैं बहुत खुश हूँ, पहले बार आई और पहले बार मुझे बैठने को चांस दिए सर ने, तो मैं बहुत खुश हूँ।
The festival aims to celebrate and showcase the vibrant culture, heritage and economic potential of India's tribal communities. It is an important initiative towards creating sustainable livelihood opportunities for India's tribal communities. For Parikrama, Pallavi Parmar.
और अब दिल्ली के आदि महोत्सव के बाद हम चलते हैं भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी भाग में, तो जानते हैं विदर्भ महाराष्ट्र की स्टोरी।
यस दिव्या, द पेंच टाइगर रिजर्व located in Vidarbha region of Maharashtra has launched India's first AI based early forest fire detection and warning system. Here is a report from a correspondent.
This groundbreaking initiative is revolutionizing the forest protection by leveraging cutting-edge artificial intelligence. The system, named Pantera, is designed to swiftly and effectively detect forest fires. It has been strategically mounted on hilltops overlooking vast stretches of the reserve and is equipped with a high-resolution PTZ camera. This advanced system conducts a 360-degree sweep every 3 minutes, covering over 300 kilometers in real-time with the power of 50 commercial satellites. Pantera enables a rapid and efficient response to potential fire outbreaks. The Kolokmara Pinch office collects and analyzes weather patterns, temperature trends and historical fire data in real time, allowing the high accurate predictions of future fire incidents. The system can also distinguish between smoke and clouds, significantly reducing false alarm in both day and night. Each alert generated by Pantera is precise and reliable. Additionally, it is integrated with water tanks, GPS-equipped vehicles, control units, and other emergency response system, optimizing coordination for swift action. This pioneering AI-driven technology marks a significant leap forward in forest conservation, enhancing the resilience of natural ecosystem while ensuring a proactive approach to wildfire management. This is Himangi Kulkarni with Dhananjay Vankhede for Parikrama from Akashwani Nagpur.
और मेघालय वस्त्र विभाग को भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ ने वस्त्र स्थिरता पुरस्कार के अंतर्गत एक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया है। वस्त्र विभाग द्वारा ये पुरस्कार भारत टेक्स वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी में परिधान प्रदर्शन के लिए दिया गया, जिसका आयोजन नई दिल्ली में भारत मंडपम में किया गया था।
भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ के महासचिव ने बताया कि निर्णायक मंडल वस्त्र विरासत पुनरुद्धार की दिशा में मेघालय के वस्त्र विभाग के उल्लेखनीय प्रयासों से अत्यधिक प्रभावित था। CITI ने बताया कि यह सम्मान टेक्सटाइल हेरिटेज रिवाइवर अवार्ड स्वदेशी कपड़ा विरासत के पुनरुद्धार को आगे बढ़ाने, विस्थिरता और नवाचार को बढ़ावा देने और समुदायों के प्रभावशाली योगदान के लिए व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। मेघालय के कपड़ा विभाग के प्रधान सचिव फ्रेडरिक राय खारकोंगोर ने केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा से भारत मंडपम में यह पुरस्कार प्राप्त किया। यहाँ यह बताना उचित है कि कपड़ा विभाग ने मेघालय के पहले ERI सिल्क गांव के रूप में रिभोई जिले के उमदेन दीवोन गांव की घोषणा की और मान्यता दी। सिल्क गांव ने उपहार में मेहमानों को स्वागत में दिए जाने वाले रेशम से बने वस्त्र, जिन्हें मेघालय में रिंडिया कहा जाता है, को विकसित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। रिंडिया के अंतर्गत आने वाले वस्त्र मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा जैविक रेशम के उत्पादन से हाथ से बनाए जाते हैं। परिक्रमा के लिए परितोष दीक्षित, आकाशवाणी शिलांग।
Every year, the President of India announces the names of the recipients Padma Shri Award on the occasion of Republic Day. And this year, the names of 139 personalities working in different fields have been nominated for this fourth highest civilian award of the country. Among them is 91 years old Thiam Suryamukhi of Manipur, who has made a significant contribution in the field of classical dance. We have more from our Imphal correspondent, J.J. Thokchom.
Thiam Surjamukhi Devi, a renowned Manipuri classical dancer, best on with the prestigious Padma Shri Award this year for her outstanding contribution to the art form. The announcement came on the eve of India's 76th Republic Day, conferred by President Draupadi Murmu. Born in 1935 in Kaishampat Lemazam Laikai of Imphal West, the passion of Surjamukhi for dance ignited at the early age. Encouraged by her family, she took her first formal lessons under Padma Shri awardee Maishnam Amubi and refined her craft under the guidance of Yambe Mahabir Singh, Amudon Sharma, K.S. Lokeshwar, A.I.M.B. Singh and T.H. Baruni. Her remarkable journey in Manipuri dance has been recognized with multiple accolades. She received the Manipur Kala Academy Award in 1985, the Nirta Bhushan Upadhi from Manipur Sahitya Parishad in 1999, the Sangeet Natak Academy Award in 2003, and Guru Tarun Kumar Saman in 2009. Speaking to Akashvani News, Srimati Thiam Surjamukhi said that she feels happy when the president chose her for the award and thanks to her gurus.
I want to express my heartfelt gratitude to my guru and mentors for their unwavering guidance and support. I am truly grateful for every opportunity to represent my state and showcase Indian culture on the global stage.
In Manipur, the true custodian of Manipuri classical dance, Thiam Surjamukhi Devi's legacy continues to inspire generations of artists. Even at the age of 90+, she still continues to teach Manipur classical dance to young artists under the scheme of Guru Shishya Parampara. JJ Thoksom for Akashvani News Parikrama, Imphal.
Yes, and in some business news today, the benchmark domestic equity indices ended on a flat note in a choppy trading session today. The 30-day index at the Bombay Stock Exchange, Sensex dropped 28 points to close at 75,939. Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 was marginally down by 12 points to settle at 22,933. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading up at 86,680 rupees for 10 grams, and silver 999 fine was also trading up at 97,840 rupees per kilogram when reports last came in.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल.
In cricket, the 9th edition of the ICC Champions Trophy started in Karachi a short while ago, with defending champions Pakistan competing against New Zealand in the opening match. New Zealand were 137 for 3 in 29 overs when reports last came in. Earlier, Pakistan won the toss and decided to bowl first.
और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज शाम वडोदरा के कुटाम्बी स्टेडियम में यूपी वॉरियर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा. एफआईएच प्रो हॉकी लीग में जहां भारतीय पुरुष टीम को कल रात भुवनेश्वर के कलिंगा हॉकी स्टेडियम में मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी से 4-1 से हार का सामना करना पड़ा. दोनों टीमें आज शाम फिर आमने सामने होंगी. दूसरी ओर भारतीय महिला टीम भी स्पेन से करीबी मुकाबले में 3-4 से हार गई. भारतीय टीम आज शाम फिर स्पेन के समक्ष चुनौती पेश करेगी.
Now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
Today, we remember the eminent nationalist leader, Gopal Krishna Gokhale, who died on the 19th of February, 1915. Born on the 9th of May, 1866 in Maharashtra, Gokhale graduated from Elphinstone College in 1884. In addition to learning English, he was exposed to Western political thought and became a great admirer of theorists such as John Stuart Mill and Edmund Burke. Gokhale was deeply influenced by the social works of Justice Mahadev Govind Ranade.
At the age of 22, Gokhale became secretary of the leading political organization, Sarvajanik Sabha. At the age of 29, Gokhale was chosen to be the secretary in the Indian National Congress. In the same year, he was elected to the Senate of Bombay University. Gokhale was also a member of the Pune municipality and served as its president. Under his leadership, the municipal government was effectively reformed and democratized.
In 1899, He was elected to the Bombay Legislative Council and played a prominent role until his election to the Imperial Legislative Council in 1902. In the Imperial Legislative Council, his command over subjects marked him as the most distinguished member of the council. The year 1905 saw Gokhale at the apex of his political career.
He was elected president of the Indian National Congress and he founded the Servants of India Society, which was dedicated to the advancement of the nation's welfare. He was also sent by the Congress on a special mission to England to promote India's constitutional demands before the British government. While in England, Gokhale had several important interviews with the Secretary of State for India, John Morley.
In 1912, when Gokhale visited South Africa, he met Gandhiji, where he was fighting for their rights of indentured labourers. When Gandhiji returned to India in 1915, it was Gokhale who mentored him. Gokhale helped Gandhiji acquire knowledge and understanding of the issues confronting common Indians. The great leader Gopal Krishna Gokhale died on the 19th of February 1915, leaving a void in the lives of his admirers. We salute the great nationalist.
We also remember Gandhian thinker and activist Dharampal, who was born on the 19th of February 1922 in Muzaffarnagar. From his childhood, Dharampal was deeply inspired by Mahatma Gandhi. Responding to Gandhiji's call for individual satyagraha in 1940, he joined the freedom struggle. In 1942, he left his graduation and became actively involved in the Quit India movement. He also worked with Gandhiji's disciple Mirabai.
In 1947, at the time of partition, he was put in charge of the Congress Socialist Party's Centre for the Rehabilitation of Migrants coming from Pakistan and came in close contact with Kamala Devi Chattopadhyay and Dr. Ram Manohar Lohia. He was also a founding member of the Indian Cooperative Union in 1948.
From 1966, Dharampal devoted himself to an exploration of the Indian archives spread over the British Isles. In this period, he published several books on the nature and functioning of pre-British Indian society. Some of his seminal works include Civil Disobedience and Indian Tradition and The Beautiful Tree, Indigenous Indian Education in the 18th Century.
His research has revolutionized the understanding of Indian culture, scientific and technological achievements on the eve of the British conquest. Collections of his writings have been published by the Publications Division of the Government of India. Dharampal was closely associated with Gandhiji's Sevagram Ashram at Wardha, which he considered his main abode until he passed away there on the 24th of October 2006.
और अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस या जयंती. श्रोताओं, आज सबसे पहले याद कर रहे हैं
रोनाल्ड बेलफोर्ड बोन स्कॉट, हु पास्ड ऑन दिस डे 1980. ही वाज एन ऑस्ट्रेलियन सिंगर हु वाज द सेकंड लीड वोकलिस्ट एंड लिरिसिस्ट ऑफ द हार्ड रॉक बैंड ACDC फ्रॉम 1974 अंटिल ही डाइड इन 1980. In the July of 2004 issue of Classic Rock, Scott was ranked number one in a list of the 100 greatest front men of all time. Let's listen in to the band's hit track, Let There Be Rock.
और आज प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार नारायण श्रीधर बेंद्रे की पुण्यतिथि है. उनका जन्म 21 अगस्त 1910 को मध्य प्रदेश में हुआ. उनको पहली सार्वजनिक मान्यता 1934 में मिली जब उन्होंने बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का रजत पदक प्रदान किया गया. 1941 में इसका सर्वोच्च सम्मान स्वर्ण पदक भी उन्होंने प्राप्त किया. 1969 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया. 1948 में नारायण श्रीधर बेंद्रे ने यूएसए की यात्रा की और न्यूयॉर्क की विंडरमेयर गैलरी में अपने चित्रों की प्रदर्शनी की.
Yes, and I think Divya, that Pankaj Kumar Mullick also passed away on this day in 1978.
बिल्कुल. और पंकज कुमार मलिक की अगर हम बात करें तो हेमंत दा के गुरु कहे जाते हैं पंकज मलिक. और पंकज मलिक का जन्म कलकत्ता में हुआ था. वे बांग्ला संगीत और फिल्मों में सफलता के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी अपनी कामयाबी का परचम लहराने वाले शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ थे. रविंद्र संगीत को सफलतापूर्वक फिल्मों में लाने वाले पंकज मलिक पहले संगीतकार थे. उन्होंने फिल्म मुक्ति में रविंद्र संगीत का प्रयोग किया था, जिससे टैगोर के गीत आम जनता के सामने पहली बार सिनेमा के रूप में आए. अपने 50 साल के संगीत करियर में पंकज मलिक ने 5,000 गीतों की रचना की और वे जब भी पर्दे पर अवतरित हुए कामयाब रहे. उनकी कई फिल्में जैसे कि डॉक्टर, आंधी और नर्तकी बहुत ज्यादा चर्चित रहीं. जाति प्रथा की समस्या के खिलाफ भी संदेश देने वाली फिल्म डॉक्टर में पंकज मलिक ने कई गाने खुद गाए जो काफी हिट हुए. आइए सुनते हैं उनका ही एक गीत.
ये रातें, ये मौसम, ये हंसना हंसाना, ये रातें मुझे भूल जाना, इन्हें ना भुलाना, 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 ये रातें.
Yes, and Pankaj Kumar Mullick was awarded the Padma Shri in 1970, followed by the Dada Saab Phalke Award, India's highest award in cinema, given by the Government of India in 1972 for a lifetime contribution to Indian cinema. And also Divya, Nicholas Copernicus was born on this day in 1473. He was a Renaissance polymath, active as a mathematician, astronomer and Catholic canon, who formulated a universe model that placed the sun rather than the earth at its center. In all likelihood, Copernicus had developed his model independently of Aristarchus and Samos, an ancient Greek astronomer who had formulated such a model some 18 centuries earlier.
और आज पुण्यतिथि है भारत के प्रसिद्ध विद्वान, समाजवादी विचारक, शिक्षा शास्त्री और देशभक्त नरेंद्र देव की. उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ और देश की आजादी के लिए उन्होंने कई बार जेल यात्राएं भी की और जवाहरलाल नेहरू के साथ अहमदनगर किले में भी बंद रहे. नरेंद्र जी का व्यक्तित्व बड़ा ही असाधारण था. वे हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, पाली आदि भाषाओं पर समान अधिकार रखते थे. बौद्ध दर्शन के अध्ययन आदि में उनकी विशेष रुचि थी. और वहीं अब अगली जो नज्म है वो है खुमार बारा बंकवी की, जिनकी आज पुण्यतिथि है. अकेले हैं वो और झुंझला रहे हैं, मेरी याद से जंग फरमा रहे हैं. ये कैसी हवाएं तरक्की चली है, दिए तो दिए दिल बुझे जा रहे हैं. और इनका जन्म बाराबंकी उत्तर प्रदेश में हुआ था. उनका वास्तविक नाम मोहम्मद हैदर खान था, लेकिन शायद ही कोई इनके इस नाम से वाकिफ हो. बाराबंकी जिले को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहचान दिलाने वाले अजीम शायर खुमार बाराबंकवी को करीबी लोग प्यार से दुल्हन भी बुलाते थे.
Yes, and Anthony Frank Imomi Jr. was born on this day in 1948. He's an English musician. He co-founded the pioneering heavy metal band Black Sabbath and was the band's guitarist, leader, primary composer and sole continuous member for over 5 decades. Let's listen in to the band's hit track Iron Man, and it's from the album Paranoid.
आज जयंती है भारत के मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की. उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी महाराष्ट्र में हुआ. छत्रपति शिवाजी राज भोसले के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था. सेनानायक के रूप में शिवाजी की महानता की काफी ख्याति रही. शिवाजी ने अनेक किलों का निर्माण और पुनरुद्धार करवाया. उनके निर्देशानुसार वर्ष 1679 में अन्नाजी दत्तों ने एक विस्तृत भू सर्वेक्षण कराया, जिसके कारण एक नया राजस्व निर्धारण हुआ.
Yes, and Seal was born on this day in 1963. He is an English singer, songwriter and record producer. He is the recipient of many awards. He signed with record producer Trevor Horn's ZTT Records to release his eponymous debut studio album in 1991. His 1994 single Kiss from a Rose picked atop the latter chart after its inclusion on the film soundtracks of The Neverending Story 3 and The Batman Forever.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए दिव्या तोमर और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।